दो, राज्य का स्वरूप, नेचर ऑफ द स्टेट। प्रस्तावना द्वारा भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया है और राज्य के स्वरूप की इन विशेषताओं का अलग अलग वर्णन नीचे किया गया है। एक, भारत प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। प्रस्तावना द्वारा भारत को संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि हर प्रकार के आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि राज्यों की तरह पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न है। आज हम पूरी तरह स्वतंत्रता से आंतरिक और बाहरी नीति का निर्माण करते हैं और यह अंतिम शक्ति भारत के लोगों के पास है। कुछ आलोचकों का विचार है कि भारत राष्ट्रमंडल कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है और इस कारण पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है, परंतु यह विचार निराधार है क्योंकि एक, राष्ट्रमंडल के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। आज यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नहीं है अपितु स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है और यह निर्णय 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर किया गया था। दो, राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ है। तीन, भारत इसका सदस्य अपनी इच्छानुसार बना हुआ है और जब चाहे इसे छोड़ भी सकता है। पंडित नेहरू के कथनानुसार यह स्वतंत्र इच्छानुसार किया गया समझौता है और स्वतंत्र इच्छानुसार ही समाप्त भी किया जा सकता है। इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। पेज 31। राष्ट्रमंडल के अतिरिक्त भारत और भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, परंतु ये संगठन भारत की प्रभु सत्ता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते। दो, भारत एक समाजवादी राज्य है, इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। संविधान के 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द जोड़कर भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। इस शब्द का प्रस्तावना में शामिल किया जाना भारत द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक और सामाजिक नीति का स्पष्टीकरण करता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम एक ऐसा समाज स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं जो शोषण रहित हो, संपत्ति का भेदभाव पूर्ण विभाजन ना हो, जनता को उपजीविका कमाने के लिए पर्याप्त और उचित साधन प्राप्त हो, उत्पादन और उत्पादन के साधन सार्वजनिक नियंत्रण में हो, बुढ़ापे, बेरोजगारी, अपंग, बीमारी आदि की स्थिति में व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए। यद्यपि समाज के किसी भी भाग में समाजवाद सोशलिस्ट शब्द के अर्थों को स्पष्ट नहीं किया गया, परंतु फिर भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला अध्याय यह स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार का समाजवादी समाज हम स्थापित करना चाहते हैं। संविधान का 44वां संशोधन जो 1979 में किया गया के अनुसार समाजवाद शब्द की व्याख्या इस तरह की गई थी। समाजवादी गणराज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हर प्रकार के शोषण से स्वतंत्र हो। द एक्सप्रेशन रिपब्लिक एज क्वालिफाइड बाय द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट मीन्स ए रिपब्लिक इन विच देयर इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एज प्रपोज्ड इन 44th अमेंडमेंट। परंतु राज्यसभा ने समाजवाद की इस परिभाषा को ग्रहण नहीं किया और इस तरह 44वें संशोधन का भाग अग्रहण कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवाद के संबंध में विचार प्रकट करते हुए कहा था, हमने यह सदैव कहा है कि हमारी समाजवाद की अपनी ही किस्म है, हम उस क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे जिसकी आवश्यकता होगी। केवल राष्ट्रीयकरण करना ही हमारी किस्म का समाजवाद नहीं है। वी हैव ऑलवेज सेड दैट वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। वी विल नेशनलाइज द सेक्टर वेयर वी फील द नेसेसिटी। जस्ट नेशनलाइजेशन इज नॉट अवर टाइप ऑफ सोशलिज्म। मिसेज इंदिरा गांधी। इससे अभिप्राय है कि चीन और दूसरे समाजवादी देशों की तरह हम निजी संपत्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहते, अपितु इसे साधारण कानूनी अधिकार 44वां संशोधन के रूप में मान्यता दी गई है। 3. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। संविधान के 1976 में किए गए संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट रूप में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। परंतु इस संशोधन के किए जाने से पहले भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। भारत के संविधान द्वारा किसी भी धर्म को राज्य का धर्म ग्रहण नहीं किया गया। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। संविधान की धारा 25 से लेकर धारा 28 तक प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिस अनुसार कोई भी धर्म मानने, धारण करने, प्रचार करने आदि का अधिकार दिया गया है और राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। विभिन्न धर्मों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही है और ना ही राज्य धर्म के नाम पर कर ही लगाता है। ये सभी बातें इस बात की सूचक हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। 4. भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। प्रस्तावना द्वारा भारत को लोकतंत्रीय राज्य भी घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास नहीं है, अपितु भारत की समस्त जनता के पास है। शक्ति का स्रोत लोग हैं और लोग वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि राज्य का राज्य प्रबंध चलाते हैं। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी प्रणाली की सरकारें स्थापित की गई हैं और सेना को सार्वजनिक शक्ति के अधीन किया गया है। इसके साथ साथ कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और निश्चित समय के पश्चात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का भी प्रबंध किया गया है। पेज 32। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की भी व्यवस्थाएं हैं और धारा 12 से लेकर धारा 35 तक दिए गए मौलिक अधिकार और धारा 36 से लेकर धारा 51 के अंतर्गत दर्ज निर्देशक सिद्धांत इसके सूचक हैं। 5. भारत गणराज्य है। इंडिया इज रिपब्लिक। प्रस्तावना के अनुसार भारत को एक गणराज्य भी घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए गए अर्थों के अनुसार गणतंत्र से अभिप्राय उस राज्य से है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास और उनके द्वारा चुने प्रतिनिधियों या अधिकारियों के पास होती है। यह किसी सम्राट या शासक द्वारा राज्य प्रबंध चलाए जाने के विपरीत है। रिपब्लिक मीन्स ए स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर वेस्ट्स इन द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स एज अपोज्ड टू वन गवर्न्ड बाय ए किंग और ए रूलर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अमरीकी विद्वान मेडिसन के विचारानुसार गणराज्य वह सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत जनता का महान समूह है और जिसका राज्य प्रबंध उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जो अपने पद पर जनता की इच्छा, सीमित समय या अच्छे व्यवहार तक रहते हैं। रिपब्लिक इज अ गवर्नमेंट विच डिराइव्स इट्स पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ग्रेट बॉडी ऑफ पीपल एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय पर्सन्स होल्डिंग देयर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर फॉर ए लिमिटेड पीरियड और ड्यूरिंग गुड बिहेवियर मेडिसन। भारत गणतंत्र होने के रिपीट भारत गणतंत्र होने की ऊपर लिखित सभी शर्तें पूरी करता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में निश्चित कार्यकाल के लिए चुना गया प्रतिनिधि है। शक्ति का अंतिम स्रोत लोग हैं और सरकार लोगों के समक्ष उत्तरदायी भी है।